رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اب ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے. غزوہ احد کے اندر ایک وقتی بھگدڑ جو مچی تھی وہ مال کی محبت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول جانے یا اوور لک کرنے کی صورت میں ہوئی تھی. تو اب یہاں سے آگے وہ صفات بتائی جا رہی ہیں. جو چاہے تو احد کا میدان ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو جو حق بات پہ جمنے کے لیے ضروری ہے. بڑی اہم بات ہے, اس کو میں پھر دہراتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہ سن پائیں. ہم بہت سارے لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور جنت ہم سب کا گول ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان نیتوں پہ اور ان ارادوں پہ جمنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی. ان میں سے کون سی چیزیں ہیں آج ہم اس میں ان آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے. دوسری صورت میں آپ کہہ لیجئے کہ جنت کے حقیقی وارث کون ہوں گے, متقی کون ہے. چونکہ بہت ساری صفات ہیں اس لیے سبھی کو ہلکا ہلکا کر کے پھر اینڈ پہ ایک پرسنالٹی کو ڈسکس کر لیں گے. اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. آیت 134 سے, الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی. آپ 1 2 3 کر کے لکھیے. پہلی صفت, خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرنا. تقابل کر لیجئے, پیچھے بات تھی سود کی تو یہاں انفاق کی بات آ گئی. دوسری بات, والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. تیسری بات, والعافین عن الناس, اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ان کو کچھ کہیں نہ, لیکن یہ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرتے. جو یہ کر لے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. کیا پتا چلا پیچھے متقین تھے یا محسن بن گئے. کیا چیزیں ضروری ہیں محسن بننے کے لیے؟ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا, غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا. تین صفات کے بعد اگلی آیت میں پھر اور باتیں بتائی گئیں اور ان کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا گیا. قرآن کا یہ انداز نوٹ کیا کریں. بعض جب ہم کہتے ہیں جی متقین کی صفات اکٹھی ایک آیت میں کر دیں, نہیں, اہمیت کے وجہ سے مختلف چیزوں کو پہلے کیا جاتا ہے, کبھی بعد میں, کبھی کبھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. تو یہاں اب اگلا گروہ کیا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة, اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے, کوئی فحش چیز ان کی زندگی میں آ جائے, او ظلموا انفسهم, یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے. اور وہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ظلم شرک کر کے بھی ہو سکتا ہے, وہ انسانوں پہ ظلم کر کے بھی ہو سکتا ہے, حق داروں کو ان کے حق سے محروم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور بے حق والوں کو حق دے کر بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا اگر ہونے لگے زندگی میں, ذکر اللہ, تو انہیں اللہ فوراً یاد آ جاتا ہے, یعنی خدا فراموش نہیں ہوتے, اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت. پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبهم, بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. یعنی وہ کوئی گناہ پروف نہیں ہے, سن پروف نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے لگتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں. سورۃ نساء میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا کہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. ساتھ ہی کمنٹ ہے, اس کو لکھ لیجئے ایک طرح جملہ, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے. یعنی اللہ سے زیادہ بھی ہے کوئی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ کمنٹ ہے, اس کو آپ انڈر دی بریکٹس کر لیں کہ کیا خوب ہے, کیوں نہ آئیں اپنے رب کے پاس, رب سے کے سوا کوئی ہے بھی کوئی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارڈن, یعنی اپنا گناہ کسی دوسرے کے سامنے کھولنا اور اس سے معافی طلب کرنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ان کی صفات آگے کنٹینیو ہوتی ہیں, ولم یسرو, اور وہ اپنے اس فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. یسرو کے وہی جس کو اردو میں اصرار کہتے ہیں. کس بات پہ؟ علامہ فعلو, یعنی جو گناہ کبھی ہو جاتے ہیں, کبھی وقت کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, اس پہ یہ ڈٹے نہیں رہتے. وہم یعلمون, اور وہ خوب جانتے ہیں, یعنی ان کو اپنے ان گناہوں کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے. دنیا میں 90% غلطی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. انسان کی قریب کی نظر بڑی کمزور ہوتی ہے, अपनी गलतियां नहीं दिखती, दूसरों की बहुत दिखती हैं। अपनी आंख का ऊंट भी नहीं दिखता और दूसरे की आंख का शहतीर भी दिखता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है कि इंसान जब गलती करे तो उसको पता लग जाए कि ये गुनाह मैंने किया है, और फिर ऐसा नहीं कि गुनाह करते जाएं कि मौत आने पे तौबा करेंगे, उस वक्त की तौबा तौबा नहीं होती। और एक मुसलमान कभी जज्बात की रो में बहकर भूल चूक कर कोई गुनाह कर भी ले तो जूं ही होश आता है फौरन अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाने लगता है, पक्का इरादा करता है कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और पूरी पशेमानी के साथ पक्के दिल से अल्लाह की जानिब पलटते हैं और तौबा करते हैं। ये सब कर लो तो क्या होगा, उलाइक जज़ाहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिनका बदला है इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत। यानी अगर किसी को जन्नत की उम्मीद लगानी है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहना है कि हमें हमारे बदले दे, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। क्या मिलेगा? वह जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा, वो जन्नात जिनके नीचे यानी वो बागात जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। व नेम अजरुल आमिलीन, और कितना प्यारा बदला है अजर अमल करने वालों का, यानी कितना प्यारा बदला है या अजर है अमल करने वालों का। ये सारी बातें किनको मिलेंगी? जो अमल करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दुआएं मांगने वालों का, नियतें करने वालों का, इरादे करने वालों का नहीं, अमल का बदला, जिसको आप कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, यानी इस सारे झगड़े को अगर आप और मैं छोड़ भी देना तो बात सारी का खुलासा ये कि जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती, तमन्नाओं से नहीं मिलती, इरादों से नहीं मिलती, बल्कि उन सब कामों के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, तुमसे पहले भी बहुत से हालात वाकयात गुजर चुके हैं। यानी ये जो आज कहानियां और बातें सुनाई जा रही हैं, ये बातें पहले भी हुई थी, ये कोई नई बात नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला ने पहले से भी बातें की थी। हो गई ये बातें फसीरु फिल अर्दी, देखना चाहो मिलना चाहो तो जाओ जमीन में सैर करो, घूमो फिरो, देख के आओ फिर क्या होगा। फंजुरु कैफ काना आकिबतुल मुकज्जिबीन, बस देख लो कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। किस चीज को झुठलाने वाले? अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की बातों को ना मानने वालों का अंजाम देख लो क्या हो गया। और साथ ही फिर आखिर में कहा, हाज़ा बयानु लिन्नास, ये वजाहत है लोगों के लिए, वह हुदन और हिदायत भी है, वह मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और मौइज़ा यानी नसीहत वाली बात है उन लोगों के लिए जो तक्वा अख्तियार करें। देखिए ये जो कट्ठा हमने आखिरी पैकेज पढ़ा है ना, इससे ऊपर क्या था? वो इद्दत लिल मुत्तकीन, इसीलिए बीच में मैं रुकी नहीं, मुनासिब नहीं लगा मुझे रुकना, क्योंकि कुरान की आयात को जब आप एक पैकेज की सूरत में समझते हैं ना तो बात समझ आती है। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। आपके मेरे सामने आयत नंबर 134 से लेकर 138 तक एक पैकेज तैयार हुआ। वो लोग जो आसानी और तंगी के मौके पे अल्लाह के रास्तों में खर्च करें, गुस्सा पी लें, लोगों से दरगुजर करें, अल्लाह ऐसे मोहसिनों से प्यार करता है। जब कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या गुनाह का काम कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र करते हैं और अपने गुनाहों के लिए इस्तगफार करते हैं, और वाकई फिर अल्लाह के सिवा है कोई जो गुनाहों को बख्शे। और जो लोग इल्म आने के बाद किसी बुरे काम पे अड़ नहीं जाते, अनजाने में हो गया ना जानने में हो गया, जब ये सब है तो फिर ऐसे ही लोगों का बदला है रब की तरफ से मग़फ़रत, यानी गुनाहों की माफी फिर ऐसे ही लोगों के लिए है, और जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा रहेंगे, और नेक काम करने वालों का क्या ही अजर है। इन चंद बातों को अगर मैं और आप अपने ऊपर लें, आपने काउंट की कितनी चीजें थी? पांच चीजें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो सात भी बन जाएंगी, ठीक है? अपने अंदर ढूंढी आपने, देखिए कि सबसे मुश्किल अपना मुहासबा होता है, ये आपके मेरे लिए एक लाजमी बात है। मुझे आपको जो चीज जिंदगी में सबसे ज्यादा मसरूफ रखती है ना, वो क्या है? दूसरों की खामियां चुनो, दूसरों की बुराइयां देखो, दूसरों पे तबसरे करो, उसने ये किया, उसने ये कहा, उसने ये कर दिया, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। और जिस चीज के लिए हमारा वक्त ही नहीं बचता, कहना चाहिए कि वक्त खत्म हो गया, बातें तो बड़ी अहम थी, चलिए नेक्स्ट टाइम से लेट्स सी अगेन, तो वो बातें हमारी अपनी इसलाह की होती हैं। हालांकि एक ईमान वाले के पास ये जिंदगी एक चांस है, लफ्ज़ चांस मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, जहन में पांच से आ जाते हैं, तीर अंदाजी आती है। लेकिन एक जुमला कहीं पढ़ा कि जब तक सांस है तब तक चांस है। इसको आप ऐसे कह लीजिए कि जिंदगी में हम सब के पास वक्त का एक मुकर्रर हिस्सा अल्लाह ने दिया हुआ है, गुजर चुका है, बाकी रह गया। देखिए आप लोगों को मैं एक फर्क से समझाना चाहती हूँ। जैसे जो लोग जॉब करते हैं ना, जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं, उनको पता होता है कि एक मखसूस अमाउंट हमारे अकाउंट में आएगी, पूरा महीना हमने उसमें गुजार देना। फितरी सी बात है, शुरू में ज्यादा गुजरता होगा, खर्च होता है, आखिरी दिनों में हाथ तंग होता है, लेकिन उम्मीद क्या होती है कि अब जब अगला महीना आएगा उसी वक्त ही कुछ आएगा, वरना खत्म। तो वो जो लिमिटेड सी मनी होती है ना, फिर उसको बंदा जोड़ तोड़ करके इस्तेमाल करता है। शुरू के महीने में मौजें कर लें तो आखिरी दिनों में तकलीफ है, और ऑपोजिट भी। और कई बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने हर चीज को बैलेंस किया होता है, वो बहुत अच्छी गुजार जाते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट कारोबारी लोग, ताजिर, दिहाड़ीदार, मजदूर, बिजनेसमैन, उनके पास मनी के आने और जाने का कोई वक्त नहीं होता। कभी आ जाए तो बहुत आ गई, और कभी शुरू में बहुत आई तो आखिर में कुछ ना रही, ये पक्की सी बात है। आपकी मेरी जिंदगी एक मजदूर की जिंदगी है। अल्लाह ने आपको मुझे कुरान में कई बार इसका एहसास दिलाया। हम सूरह शुरा में भी पढ़ेंगे कि दुनिया खेती है, हरसल हयात, हर्ष का लफ्ज है, हदीस से मिलता है कि दुनिया मिजरतुल आखिरा। मैं और आप यहाँ एक मजदूर की तरह, हमारी सांसों की एक मखसूस मकदार मुकर्रर कर दी गई, हमें वक्त का एक कोटा मुकर्रर करके दे दिया गया, और अब क्या कहा, वसारी इला मगफिरत मे रब्बी को। जो तेज चलेगा वो ज्यादा फासला तय करेगा, और जो रींगता ठींगता कदम उठाता, कभी उठाया कभी नहीं उठाया, कभी भागा कभी चला कभी सो ही गया, वो नहीं चलेगा। कछुए और खरगोश की दौड़ को याद कीजिए, टर्टल और हर, वो मुसलसल चल चल के भी पहुंच गया, लेकिन वो छलांगे मार के ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, ज्यादा ही उसके अंदर मान आ गया कि मैं तो तेज ही बड़ा चलता हूं, और सो गया और जन्नत निकल गई। अल्लाह सुबहाना ताला को इससे कोई गरज नहीं कि आप खरगोश हैं या कछुआ हैं। लिख लें, मैं एक मिसाल देती हूँ फिर आप समझेंगे। खरगोश आप उसको कहिए जिनको सोसाइटी में आप बहुत भागते हुए नेकियां करते देखते हैं, उछल कूद रहे हैं अपनी नेकियों पे, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, उनके नाम, उनकी शोहरतें, उनकी मशहूरी, और बाकी होंगे अच्छे काम करते हैं, और आप अपने आप को कछुआ कह लें, कछुए कह लें, हाय मेरे अंदर तो कुकू भी नहीं, कुछ आता ही नहीं, करना ही कुछ नहीं। देखना इन सारे मशहूर लोगों ने जन्नत जाके मल लेनी है, जिसको हमारी जबान में कहते हैं मल लेनी है, भागेंगे दौड़ेंगे जाके वहां जन्नत में पहुंच जाएंगे, और हम रींगते 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 जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, स्पीड के मुताबिक एक ही फासला कम या ज्यादा वक्त में तय हो जाता है। शॉर्टेस्ट रूट ले लीजिए या लॉन्गेस्ट रूट ले लीजिए, असल चीज आपकी रफ्तार भी और हर्डल्स भी है। ये जो सारी वो है ना, सुरा से सीन रा आइन इसका रूट है, क्योंकि लफ्ज की खूबसूरती में जाए बगैर बात नहीं बनती। इंग्लिश में इसका बहुत ही खूबसूरत तर्जमा मेरे जहन में आता है, और वो है स्विफ्ट, गाड़ी का भी नाम है ना, एक स्विफ्ट गाड़ी किसी की है, तो स्विफ्ट का मानी क्या होता है, सुरत, फ्लुएंट, बहुत तेजी से भागने वाली। सीन रा आइन इसका रूट है, जल्द वाकया हो जाना, तेज जल्दबाज, उसने जल्दी की। आगे निकलने वाले घोड़े को कहते हैं असरआनु मिनल खैल, तो जल्दी करने वाले सुस्त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह तआला के लिए कितनी दफा आया है, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह तआला दुनिया में अपने सरीउल हिसाब होने का इजहार कैसे करते हैं, कि दुनिया में हमें हमारे गुनाहों पे पकड़ लेते हैं, या दुनिया में लोगों को उनकी नेकियों पे जजा देने लगते हैं। सूरत काफ में हम पढ़ेंगे सिरान, तेजी से वाकई हो जाना। तो सारी विला मगफिरतिन से मुराद क्या है, कि ढीली ढाली नहीं, तेज रफ्तारी इख्तियार करो। अल्लाह की जन्नत की तरफ भागने के लिए तुम्हारे पास सांस थोड़े रह गए। अगर मुझे आपको ये आयत याद रहे, यकीन करें सुस्तियां खत्म, खुद पे रहम खत्म, आप इमेजिनेशन में लाए एक बंदा दौड़ रहा है, आप कहीं ना देखें, बस अपने आप को सोचें, सारी विला मगफिरत, मैंने दौड़ना है, भागना है। दुनिया में किसी भागने वाले को सोचिए, इधर उधर नहीं देखता, सुस्त नहीं होता, वो ये नहीं कहता सारे नहीं भाग रहे तो मैं क्यों भागूं, सारे नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं, सारे नहीं खा रहे तो मैं क्यों खाऊं, खाना खुलने की देर है, सारा सुर्रत से भाग के लोग जाते हैं कि चलो। तो मुझे आपको जाना किधर है, इला मगफिरत मे रब्बिकुम, सोचिए जरा, हमें मगफिरत की जरूरत है, वल्लाह ही बहुत है, ये अल्लाह की बख्शिश ही है जिसकी वजह से आज मैं और आप दुनिया में सर उठा के खड़े हैं, वरना तो पता नहीं हमारा दुनिया में हाल क्या होता। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें दुनिया में ढांपा हुआ है, तो बख्शिश के लिए भागो, दुनिया में गुनाह हो गए अब नेकियां करो, वक्त जाया किया तो अब भड़ो, अब वक्त का सही इस्तेमाल करो, नेमतों की बर्बादी की है तब नेमतों को इस्तेमाल करो, ना शुक्री थी तो शुक्रगुजारी करो, हलाकत से बचो, बर्बादी से बचो। कभी आपने सोचा पीछे आग लगी और कैसे लोग भागते हैं? देखिए, वो फेक है, वो असली है, या वो किसी पुराने एरोप्लेन क्रैश की भी ऑडियो है जो आजकल अक्सर आप लोगों तक भी पहुंची होगी, 10-12 सेकंड की, या मेरा हले 20 सेकंड की एक ऑडियो आजकल बहुत घूम रही है। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये जो हालिया जहाज क्रैश हुआ उसकी है, वो ना भी माने, लेकिन ये किसी ने कह दिया कि ये पिछले की है। इत्तेहाद एयरलाइंस का कोई जहाज गिरा था आज से कुछ साल पहले, तो जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं शायद, तो वो रिकॉर्डर होता है असल में ना। मैंने पूछा किसी से कि ब्लैक बॉक्स क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है ये क्यों नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, रिकॉर्डर होता है उसके अंदर लगा, और उसको उन्होंने खूब फौलाद और जो भी मोटी चीजों में डाला था कि उसको आग नहीं लगती, वो हर चीज जो जहाज में हो रही होती है ना उसको रिकॉर्ड करता है, पायलट क्या कह रहा है, स्पीड कितनी थी, ऊपर थी नीचे थी, आवाजें आती हैं, तो जो भी था ना, ये सारी इला मगफिरतन से मुझे वो याद आ गया, पीछे आग ही लगती है ना अंदर, तो वो जो अंदर वाले लोगों की आवाजें हैं ना, इधर भी है मेरे पास, पर जरूरत नहीं सुनाने की, हमारा इमेजिनेशन भी बहुत है। कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और कुछ चीख रहे हैं और कुछ रो रहे हैं, कोई कह रहा है हाय मैं मर गया हाय मैं मर गया, अल्लाह अकबर की आवाजें बहुत क्लियर समझ आ रही हैं। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी इसको पढ़ते हुए कि देखिए वो क्या चीजें हैं, मौत सामने आई ना, आग लगी ना जहाज में, तो मैं इमेजिनेशन में उसको एज्यूम कर रही थी कि आप एक छोटी सी टनल में बंद है और इधर भी आग और उधर भी आग, और आप भाग रहे हैं तो जाएंगे किधर? सूरत अंबिया में आप पढ़ेंगे, अल्लाह कहते हैं कि अब भागो नहीं घरों की तरफ जिधर तुम बड़े इतराते थे। तो जब अल्लाह कहते हैं सारी ला मगफिरतिन, तो क्या गुनाहों की आग जलते हुए जहाज की आग से कम खतरनाक है? गीबतों की आग, नाफरमानियों की आग, बिदतों की आग, सूद की आंधियों की आग, क्या ये कम है? तो क्या मुझे आपको यहां ठंडे ठंडे बैठ के ये आयतें पढ़ के निकल जाना चाहिए घर? आज वक्त है मेरे आपके पास, और ये रूम इधर ये आपको फायर एग्जिट सिखा रहा है, इन केस ऑफ फायर कैसे भागोगे? आज तो पूरी वो मार्शल आर्ट और क्या कुछ टेक्नोलॉजी शुरू हो गई ना दुनिया में लोगों के पास, कि आग लगे तो कैसे भागना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो लोग काम करते हैं ना, अमेरिका में कई की बड़ी ऊंची मंजिले बिल्डिंग होती है, तो वो अपने वर्कर्स को जब हायर करते हैं तो पहले ट्रेनिंग देते हैं कि आप पहले अपनी जान महफूज करें, अगर आप इधर आग में फंस गए तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जहाज में बैठ के शुरू में आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं देते, उस एयर होस्टेस ने भी दिए होंगे जो जहाज गिरा, वो खुद भी उस वक्त बड़ी मजे में सुन रही होगी कि बीसियों बार सुनी वो भी चली गई, वो पायलट जिन्होंने कई फ्लाइट्स की होंगी वो भी चले गए, की होंगी ना। बस ये याद रखिए, जब वो कहते हैं तो हम कितने कॉन्शियस हैं, और उस वक्त भी कई लोग केयरलेस ही होते हैं, और पता है हमें, छोड़ो जी बड़ी दफा गए हैं, कई लोग इस आयत पे रोएंगे सारी ला मगफिरत है मेरे रब्बी को, कि अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे मगफरत चाहिए, मुझे अपने गुनाहों से डर लगता है, और कुछ कहेंगे इट्स ओके, कुछ नहीं होता, बच जाएंगे ना, ऐसे ही मौलवी हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो सारियों से फिर क्या मुराद है, लिखिएगा, चंद अकवाल आपको लिखाऊंगी कि सारियों कैसे भागे आप। फिजिकली तो हम भाग गए, जहाज में आग लगी, हमने जूती उतार दी, सब छोड़ के भीगी बिल्ली बन के हम एग्जिट रो में आ गए, जो भी हुआ दुनिया में तो ये हो जाता है। आखरत के हिसाब से क्या है, सैयद बिन जुबैर कहते हैं सारियों से मुराद है नेक अमाल करने में जल्दी करो, इस चीज की तरफ जल्दी करो जो मगफरत का मुस्तहिक बना दे, ये दूसरी बात है, जैसे इस्लाम, तौबा और इखलास, तो तीन चीजें समझ आई। किसकी तरफ जल्दी करो, इस्लाम कबूल करने में अगर मुसलमान नहीं हो, तौबा करने में अगर गुनाह कर चुके हो, اور اخلاص لانے میں اگر اندر نفاق ہے. یہ تفسیر پہ زاویہ میں نام نہیں لکھاتی, بڑے مشکل نام ہوتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, کسی کو شک ہوگا تو پوچھ لیں بعد میں. ایک اور اس کے بارے میں سن لیجیے, ابو ہریرہ کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے, یعنی اب دن بدن دنیا میں فتنے آئیں گے, تم نیک اعمال کی جلدی کرو. آدمی صبح کو ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے. اللہ اکبر, دکھ رہا کہیں یہ بکتا ہوا؟ یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح ابو سروہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں, وہی جو پیچھے آپ کو سنا دی تھی, یہ اس کا ریفرنس ہے زیادہ لمبا, کہ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گئے اور گھر سے ایک سونے یا چاندی کا ٹکڑا لے کر آئے, کہا کہ مجھے بھول گیا تھا کہ یہ گھر میں پڑا ہوا ہے, تو اس کی یاد مجھے نماز میں آ گئی. تو یاد رکھیے کہ مجھے آپ کو یہ سب کچھ چاہیے, اللہ کی طرف سے بھاگنا ہے. کرو کیا, سن کے کھڑے نہ رو, چل پڑو. اور یہاں مجھے ایک اور کسی کی بات یاد آ رہی ہے, سو رہے ہو تو اٹھ جاؤ, اٹھے ہو لیٹے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو تو چل پڑو, چل پڑے ہو تو دوڑ پڑو, جلدی کرو وقت کم ہے. کسی ڈیل کی خاطر کسی ایک نے دوسرے کو یہ جملے بولے تھے کبھی, وہ یاد آ گئے مجھے. جلدی کرو, فٹافٹ آ جاؤ, بڑے نفع کا سودا مارکیٹ میں آ گیا, ٹائم ویسٹ نہیں کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن. لوگ جب یہ کہتے ہیں نا ہمیں موٹیویشن نہیں ملتا, تو میں ان کا منہ دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں ان کو ہوش نہیں ہے. اللہ کی قسم, اس بندہ کو جس کی جان حلق میں اٹکی ہو, اس کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر میں اور آپ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں ہر وقت سوچیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے, آج آخری منڈے ہے, آج آخری میرا دسمبر ہے, یہ آخری میری زندگی کی سردی ہے, یہ میری زندگی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, پھر دیکھیے کیسے موٹیویشن آتا ہے. پیچھے سانپ لگ جائے تو بندہ بھاگتا ہے. ایک بڑی پیاری بات پڑھی کسی جگہ کہ ایک بادشاہ تھا, تو اس کو کسی نے باز دیے دو, یعنی پرندے دیے جو اڑتے ہیں بہت اچھے, دو میں سے ایک تو ہر وقت اڑتا تھا, دوسرا بیٹھا رہتا تھا اپنی ڈالی پہ, ہر ممکن کوشش کر لی کہ اٹھو اٹھاؤ, نہیں اٹھتا. اب بادشاہ کا دل بڑا بجھتا تھا, اس نے کئی لوگوں کو کہا کچھ کرو, کچھ نہیں ہوا. کہا جاؤ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ جو جنگل میں رہتا ہو, جس کو پرندوں کی نفسیات پڑھنی آتی ہو. لیا ایک شخص کو, کہا کہ تم اس کو اڑا دو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا. کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بخبر آئی بادشاہ کو کہ وہ باز تو اڑ رہے اوپر سے اوپر. کہا اچھا بلاؤ یہ کتنا قابل ہے, کیا کیا؟ کہا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا. کہتا بادشاہ سلامت میں نے کچھ نہیں کیا, بس میں نے وہ ڈالی کاٹ دی جس پہ وہ بیٹھا تھا. جب شاخ کٹی تو اس کو تو ڈر لگنا تھا موت کا, وہ بھاگ گیا. تو زندگی میں یاد رکھیے, بہت سپورٹیو رہنا, دوسروں پہ نظریں لگانا, یہ بعض دفعہ ہمیں سست کر دیتا. ساری لا مغفرت ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں واہ جند, اپنی اپنی ولی نبیڑ لو, کسی نے ساتھ نہیں جانا, بندے اکلے آئے اکلے جانا. قبر کی رات سوچئے, اپنے نہلانے دہلانے کو سوچئے, تو پھر ساری لا مغفرت یاد آتا ہے. یہ وہی ہے جس کو پیچھے ہم سورہ بقرہ میں فاستبقوا الخیرات میں پڑھ چکے, بھاگو دوڑو جلدیاں کر لو, جنت ایسے نہیں ملے گی. دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے لوگ تڑپتے ہیں, مرتے ہیں. سیلوں کے دن ہیں, آج کل بھی دیکھیں لوگ کیسے بازاروں کی خاک چھانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اردہ السماوات والارض, جس کی چوڑائی اتنی اس کی لمبائی کتنی ہوگی, ذرا سوچیے. آپ کہتے ہیں کہ کپڑے کی چوڑائی کم ہوتی ہے نا, ایک میٹر چوڑا 60 سینٹی میٹر ہے یا کیا ہے, بہت ہوا 1.5 گز چوڑا, 2 گز چوڑا, کتنا کوئی چوڑا تھان بنتا ہوگا, لیکن اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے, 20, 25, 30 میٹر. تو جنت کی چوڑائی کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس چیز کی دعوت دی ہے کہ ہم سوچیں. آپ اپنی ان صفات کو ایک ایک کر کے, بس میں ان کے لفظوں پہ آپ کی بات کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے میسج تو پہنچ گیا. پہنچ گیا, اندر بات گئی ہے. مت دوسروں کو دیکھیں, واللہ ہی دوسرا کیا کرتا ہے اس کے لیے کیا ممکن ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, میں نہیں کرتی, میں کس سے کہوں. لوگ یہ کسی کو آپ کو کچھ کہنے کا نہ حق ہے نہ ضرورت ہے. اگر آپ کو اپنی موت یاد ہے, آپ شکر گزار ہوں گے اللہ کے کہ اس نے آپ کو مجھے زندگی میں یہ بھاگ دوڑ کرنے کا موقع دے دیا. اور یاد رکھیے کہ متقی وہ نہیں ہوتا جو خود کو متقی کہے, متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑ دے اور حلال کو پکڑ لے, چاہے اس کو کتنا مشکل لگے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر یقیناً جنت دیتے ہیں. तो जन्नत के लिए जो तकवा की खूबियां, खुशहाली में खर्च करना, यह लफ्ज़ है सर्रा। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, मुझे पता है आपको ये मुश्किल लगता है, लेकिन कल आपने मुझे इसी पे दुआएं देनी है अगर दी कभी तो। सर्रा का लफ्ज़ जो है अरबी जुबान में दर्रा के ऑपोजिट है, जो इसी में अगला लफ्ज़ है, देख ले आप अपनी आयत में। आसूदगी और खुशहाली को कहते हैं, ऐश और इशरत की फरावानी। अरबी जुबान में कहते हैं असुरिब्बा, यानी दोनों पे शाद दर्रा पे भी और बा पे भी, और बा पे जबर है। असुरिब्बा तो वो लौंडी जिससे जिंसी ताल्लुक कायम किए जाए उसको कहते हैं, यानी खुशी की बात है ना, आसूदगी की बात है। सरीर कहते हैं पलंग को, कहाँ पढ़ा कुरान में आपने? अभी यहां तो नहीं पढ़ा लेकिन हिफ्स में तो पढ़ते होंगे, 30वें पारे में। सरीरा, पलंग जिसके चारों तरफ कुछ लगे होते हैं डंडे से, मसहरी कह लें, यानी बाहर। सरीरा इसी से है, यानी बिस्तर पे जाके जैसे बंदे को सुकून मिलता है, वही लफ्ज है। दर्रा क्या है? दरर से, द्वाद रो रो, तकलीफ। दर्रा या दुर्रू, नुकसान, माली नुकसान के लिए आता है। यहां देखिए फिर सर्राई व दर्रा का लफ्ज आया ना, तो मुराद ये के हालात जैसे भी हो। अच्छा जी, मुश्किल हालात हो तो क्या, हमारा हाल यह कि बुरा ख्वाब आ गया तो बकरों की शामत आ गई, खुशी का वक्त आया तो कैसे उछलते कूदते खर्च करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी दावत जो हम रिसेप्शन के तौर पे देते हैं वो कई लाखों पे जाके पड़ती है, कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ खुशी के नाम पे, शौक पे, और बाज़ दीन के नाम पे 100-200 में जान चली जाती है। हैरत की बात है। आप देखिए, खर्च करना तो अच्छी बात है, युनफिकून तो पीछे भी पड़ चुके हैं ना, इसलिए मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन खास तौर पे वो खर्च के जिसके बाद किसी को फायदा मिले, अपनी जात, अपने अरमान पूरे करने के लिए तो बहुत सारे खर्च होते हैं। लेकिन मेरे आपके लिए इसमें नसीहत है कि अच्छे दिनों का इंतजार ना करें खर्च करने में, बल्कि खर्च करें ताकि अच्छे दिन आए। मैंने एक हदीस पढ़ी था पहली दफा, या जब मैंने शौर से उसको पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि बात क्या। मसलन किसी मर्द, उसका कारोबार ही नहीं चलता, मुआशी तंगी कह लें, जॉब नहीं लगती या कारोबार में नुकसान है तो आपको पता है नबी सल्लम ने उसका क्या तरीका बताया? मुसलसल हज और उमरा करो। उमरे पे गए, अब हज पे जाओ, फिर उमरे पे जाओ, हज पे। आज के समय में बंदा के कौन लाए 7-8 हज़ार डॉलर, कौन लाए हर साल में एक हज के लिए और फिर 4-5 हज़ार डॉलर उमरे के लिए? पर अल्लाह के नबी ने कहा कि हज और उमरे की कसरत माशी तंगी को दूर करती है, वो यही राज है। आगे एक वो फ्लक्चुएशन आया होता है, जैसे वो आप मेहंदी की कोन खोले ना तो आगे थोड़ी सी सूखी होती है, तो आप कहते हैं खत्म हो गई, खराब हो गई। कोई कहता है जरा पीछे से पुश तो करो, जब पुश करते हैं वो सूखा सा क्रस्ट निकलता है पीछे से फ्लुएंट। ये है लजीना युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, जो है वो करते हैं, 1 रुपया कर दें, क्या खर्च कर रहे उसको कोई परवाह भी नहीं, बस वो ये देखता करो, 100 है तो 100 उसमें से दे दो, 1,000 है तो उसमें दे दो। अच्छा, यहां फिर नोट करिएगा एक बात जो पीछे भी जिक्र हुई थी, पहले सारी इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते थे ना, तो आखिर में उसका खात्मा हुआ अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा। सूद के साथ हमेशा इन्फाक फी सबीलिल्लाह को जिद के तौर पे लाया जाता है, यहां भी ऐसे ही है। यहां से पता चलता है कि सूद खोर का भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ही नहीं सकता, उसकी अपनी नहीं पूरी पड़ती, और ऐसा बंदा जो है वो उस चीज से फिर फायदा उठा भी नहीं पाता। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान अपने आप को माल की मोहब्बत और हिर्स से कैसे आजाद करे। तो पहली बात नोट कीजिएगा कि अपने मिजाज के एतबार से इंसान बखील है। आगे पढ़ेंगे हम सूरत निसाई की एक आयत गालिबन के, वख़दीरतिल अनफुस, नफ्स हाजिर कर दिए गए शुख पर, बखीली पर। इंसान के अंदर तबई तौर पे दौलत की मोहब्बत मौजूद है, सदकात के जरिए से ये माल की मोहब्बत कम होती है। देखिए, जिस चीज को अपने ऐसे देना शुरू कर देंगे ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, संभाल संभाल के सेंध सेंध के रखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो मोहब्बत और खौफ ऐसी कुव्वत है जो बंदे को माल और माल की मोहब्बत से आजाद करती है। माल की मोहब्बत की जगह अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, और माल की हिर्स की जगह अल्लाह की रजा की हिर्स, जन्नत की हिर्स। सारी ला मग़फ़िरत, ये खुद से नहीं होता, इसके लिए शऊर चाहिए होता है। अल्लाह की पहचान जरूरी है, गौर व फिक्र जरूरी है। गौर व फिक्र करने वाले शख्स के लिए दुनिया की हर चीज ईमान को बढ़ाने वाली चीज बन जाती है, और एक वक्त आता है कि बंदे की एक जिंदगी फर्क होती है। आप अपने नोट्स में ना एक लाइन खींचिए, मैं आपको तकाबुल कराती हूँ। एक तरफ लिखिए माल की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान, और दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार, यानी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला और माल से मोहब्बत करने वाला, क्या फर्क है दोनों में? अगर आप देखें तो माल की मोहब्बत वाला हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि माल दुगना फिर चुगना हो जाए, मल्टीप्लाई हो। हाँ, इसके बरक्स अल्लाह से मोहब्बत करने वाला रात दिन अपने माल को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में लगाता है। माल का पुजारी या माल से मोहब्बत वाला दुनिया में कामयाब होने के लिए माल बढ़ाता है, अल्लाह से प्यार करने वाला आखिरत में कामयाब होने के लिए माल अपना दुनिया का घटाता है और उधर बढ़ाता है। माल से मोहब्बत करने वाले का असल सरमाया माल की मोहब्बत है, जबकि दूसरे का असल सरमाया, और आपको तो सरमाया किसको कहते हैं, कैपिटल, जिसके साथ तिजारत की जाती है, रासुल माल, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। पहले को दुनिया के नफे का शौक है, दूसरे को आखिरत के नफे का शौक है। पहले को दुनिया के नुकसान का धड़का लगा रहता है, दूसरे को आखिरत के नुकसान का डर लगा रहता है। पहला शख्स दुनिया में बेकैद यानी आजाद जिंदगी गुजारता है, कहता है मन मौजी करो, दूसरा दुनिया में पाबंद जिंदगी गुजारता है। पहला शख्स अपनी जरूरियात की तरफ पूरी तवज्जो लगाए रखता है, क्या काम हो गया, अब ये लेना है, अब नया करना है, अब रेनोवेट करना है। दूसरा शख्स अल्लाह के दीन की जरूरत को अपनी जरूरत बना लेता है, एक अपने लिए कमाता है, एक अल्लाह के दीन के लिए कमाता है। पहला शख्स हर काम दुनिया के लोगों की खुशी और अपनी खुशी के लिए करता है, और दूसरा हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। फिर एक और फर्क है, दुनिया की नजरों में पसंदीदा बनना चाहता है माल वाला, और दूसरा अल्लाह की नजर में पसंदीदा बनना चाहता है। पहला शख्स अगर उसको गुस्सा आ जाए तो फट पड़ता है, और याद रखिए जितना माल ज्यादा होगा माल की मोहब्बत में उतनी लड़ाइयां ज्यादा होंगी। कंजूस होते हैं बहुत सारे मर्द जो ज्यादा कमाते हैं, बीवी क्या मांगती है, 2-4 हजार बच्चों के सर्दी के कपड़े आ जाए, वो कहते हैं नहीं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो वहां मुझे ज्यादा आएगा। घर में खाने को पैसे नहीं होते, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा होता है बाज दफा इंसान, ये शैतान का धोखा है। इसके बरक्स जो दूसरा है उसको गुस्सा आ जाए तो वो बर्दाश्त करता है। माल से मोहब्बत करने वाले को किसी से शिकायत हो तो बदला ले लेता है, जबकि दूसरा शिकायत हो तो माफ कर देता है। पहले को गलती हो जाए और एहसास ही नहीं होता, अल्लाह नहीं याद आता, दूसरे को अल्लाह याद आने लगता है, चौंक जाता है। माल की मोहब्बत वाला अपनी गलतियों को गुनाह तस्लीम करता ही नहीं है, जबकि दूसरा तौबा और इस्तगफार करता है। और आखिरी बात, 14 फर्क बताए हैं मैंने आपको, कि माल दुनिया में रह जाता है और जब अपने रब के पास पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं पाता। उस वक्त उसे पता चलता है कि माग़नानी मालिया हलकानी सुल्तानिया, आज मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया, मेरी सब हुज्जत बाजी मुझसे खत्म हो गई। सूरत अलहाका की आयतें हैं 28-29। जबकि अल्लाह से प्यार करने वाले को ऐसी जन्नतों में दाखिल करता है कि अर्दुहा कर दिस समावाती वल अर्द। तो मुख्तलिफ रवैये हैं जीने के, दो ढंग हैं, दो मुख्तलिफ शख्सियात निकलती हैं।